Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
जब हम अपने पर ले आएंगे जड़ और चेतन को बाहर कहीं नहीं ढूंढना। वैसे तो अध्यात्म के जगत में किसी भी बात को अपने से बाहर नहीं देखते। जितने भी शब्द हैं, जितने भी अर्थ हैं, हमारे अपने पर ही लागू होते हैं। अपने से जब ब्रह्म ही हो आप और अंत में वहां पहुंचना है कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर मेरे से अतिरिक्त और बाकी बचेगा ही कहां। इसलिए जब कहते हैं कि जड़ और चेतन वह दोनों ही है और उन दोनों से परे भी वही, इसका अर्थ होता है कि शरीर भी वही है, मन भी वही है, और ये दोनों जिस परम चेतन में कल्पित हैं वो इनसे अलग, ये परिच्छिन्न भाव है, वो अपरिच्छिन्न। फिर जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि जड़ भी वही है और चेतन भी वही, शरीर भी वही है और मन भी वही, तो इसका अर्थ ये होता है कि चाहो तो शरीर के माध्यम से भी उसे पा सकते हो, चाहो तो मन के माध्यम से भी पा सकते हो। रास्ता कोई भी दोनों में से अपना सकते हो, क्योंकि वो स्वयं दोनों ही है। स्वयं दोनों ही है तो इसलिए दोनों ही रास्ते हैं उसके लिए। इसके लिए ये कुछ जरूरी नहीं है कि वो अमुक रास्ते से ही मिलेगा। शरीर का मतलब होता है कि शरीर के रास्ते का मतलब होता है योग आदि जितने भी आप केवल एक वेदांत शास्त्र जो है उत्तर मीमांसा को छोड़कर बाकी जो पांच हैं, जिनमें आप सांख्य को लेते हैं, न्याय को लेते हैं, वैशेषिक को लेते हैं, योग को लेते हैं, पूर्व मीमांसा को लेते हैं, इनको थोड़ी देर के लिए शरीर से संबंधित समझ लो, और जो उत्तर मीमांसा है उसको मन से या चेतन से संबंधित समझ लो। रास्ते दोनों ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो पांच बाकी जो हैं वो बेकार ही हैं हमारे शास्त्र, कि वो कहीं पहुंचे ही नहीं उस रास्ते वाले, वो भी पहुंचे हैं। ये अपनी लेकिन इसमें थोड़ा फर्क रहता है। फर्क ये है कि वो रास्ता पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उसमें पार्थिव तत्व अधिक है, इसलिए उसमें गिर जाने की संभावना, एक जगह पर अटके रहने की संभावना अधिक, विशेषकर पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए। जो श्रद्धावान है उसके लिए इन दोनों की कोई बात नहीं। ये प्रार्थना है कि भद्रम करणे विश्रुणुयाम, ये पढ़े लिखे लोगों की। संभवतः आपने ये बात सुनी होगी या जीवन में पढ़ी होगी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, उनकी माता, उनके गांव में कथावाचक आए, कथा कर रहे थे, उनकी मां भी कथा सुन रही थी, तो वो कथावाचक इस बात पर जोर दे रहे थे कि जीवन में असत को छोड़ देना चाहिए, जीवन में असत नहीं होना चाहिए, मिथ्या का त्याग होना चाहिए। तो सारी कथा सुन के, दो दिन की कथा सुनी उन्होंने, और तीसरे दिन वो अपने घर आकर इनके स्वामी रामकृष्ण के जो पिता थे, अपने पति से वो पूछती हैं कि ये असत्य क्या होता है जिसको छोड़ना। आप कभी कल्पना करो कि इस तरह के सरल हृदय के लोग भी दुनिया में हुए आज के युग, ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की बात नहीं, ये अत्यंत सरल, सहज और सत्य के निकट पहुंचे हुए मां की बात। उसे पता ही नहीं कि असत्य क्या होता है तो छोड़े क्या, जीवन में झूठ है ही नहीं, साधारण सा जीवन है, सीधा सा जीवन है, इच्छाएं नहीं, आकांक्षाएं नहीं, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है शांति पाठ, ये हम लोगों के लिए है कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। हमारे लिए तो ये भी प्रार्थना काफी है कि अगर दोबारा जन्म मिले तो वो रामकृष्ण की मां जैसा हमारा स्वभाव बन जाए, ये पढ़ाई लिखाई कहीं रास्ते में छूट जाए, तब भी हम किसी ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर जब बात थी कानों की, तो कानों का अर्थ ये है समस्त सभी के कान। केवल जब ये ऋषियों की एक विशेषता है, हमारे ऋषि वो जब प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए नहीं करते, उसमें सामूहिकता है, सभी शामिल हैं उसमें। और आम बोलचाल की भाषा में, पता नहीं आपने भी ये मुहावरा सुना हो या ना सुना हो, हमने बचपन में सुना था, पंजाब में ये मुहावरा बहुत प्रचलित था। वो कहते थे धीरे से बात कर, दीवार के भी कान होते हैं। लो सुनो बात। तो अब यहां वो जो करने भी की बात है, कोई जगह छूटेगी नहीं ऐसी। अगर आप सोच सकते हो इस बात को कि दीवार के भी कान होते हैं, तो फिर देखो सुनेंगे हम क्या, दूसरे लोग क्या सुनेंगे, सुनेंगे वो जो हम बोलेंगे। इसलिए जब यहां सुनने की बात कहते हैं, उसमें बोलना शामिल है। ये ना सोचना कि इस बात में यह है कि कोई और शुभ बोलता रहे और हम सुने और हम जो बोलेंगे वो नहीं, तभी तो शुभ सुनेंगे अगर शुभ बोलेंगे तो। हमारा अपना बोला हुआ ही तो लौट के हमारे तक आना, किसी दूसरे का बोला हुआ लौट के नहीं आएगा। प्रतिध्वनि है जो कुछ भी आप सुन रहे, इसलिए सावधानी इस बात की है कि हम ऐसा कुछ बोले जो शुभ हो और प्रसन्नतादायक हो, अपने को और दूसरों को भी। देवाः वो समस्त शक्तियां जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, इन सब शक्तियों को अपने में ही ले आओ। मेरी देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये संकल्प है कि अगर सुनूंगा भी मैं, देखो शब्द कोई भी हो, उसके अर्थ अपने अनुकूल कर लेना, ये वेदांत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत। कोई कुछ भी कह रहा है, आप युक्ति से, प्रपत्ति से उसको अपने अनुकूल बना लो। सजातीय का चिंतन, विजातीय का परिहार। कैसा भी शब्द हो, कैसी भी बात हो, देखो कोई भी दुनिया का शब्द हो, कोई भी कुछ बोल ले और उसका कोई भी अर्थ ले लो आप, अगर अर्थ भी लोगे, अगर तो केवल शब्द ही लेते तो हर शब्द आकार में समा जाएगा अस। इसके विलय की प्रक्रिया वही है कि ये अ से निकला है, आ में ही समाएगा। और अ ओंकार का पहली मात्रा है ओम की, और ओम ईश्वर का नाम, हर शब्द को ईश्वर में जाके छोड़ देते हैं, डुबो देते हैं उसी। हर शब्द का अर्थ या तो आपको अपनी जागृत अवस्था का स्मरण कराएगा या स्वप्न अवस्था का। स्वप्न का मतलब जब आप कल्पना कर रहे हो, ये सब कल्पनाएं होती हैं कि यहां बैठे बैठे हम सोचे मैं जाऊंगा वहां से अमुक चीज खरीदूंगा, इधर जाऊंगा, ये सब स्वप्न। तो इस तरह से स्वपन का ऊ में विलय करके ऊ का फिर ओंकार में, ये एक प्रक्रिया है कि हर शब्द आपका ओम में आपको ले जाएगा। जैसे दृश्य कोई भी चीज आंखों से देखोगे तो उसका विलय की जो प्रक्रिया होती है कि ये पृथ्वी पार्थ हुआ पानी का अग्नि में, अग्नि का और जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश, ये कई बार आपने सुनी ये बातें, इसलिए मैं केवल उनको यही छोड़ रहा। हर बात आपको, जैसे हर दृश्य हर वस्तु का जब विलय करते हुए उस प्रक्रिया में आप ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, ऐसे ही हर शब्द का विलय आपको ओम तक ले जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द है। तो अपनी सभी शक्तियों को, सभी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चलने की शक्ति, यही सब देव हैं। और जैसे आपको भी शुरू में कहा कि इन्हीं का ही व्यक्तित्व करण पर्सोनिफिकेशन है, कि हमने बना लिए हाथ के देवता इंद्र हैं, जुबान के वरुण हैं, वाणी के अग्नि हैं, कान के दिख हैं, और ऐसे ऐसे हमने सभी देवताओं की कल्पना की हुई है। जितनी इंद्रियां, उन इंद्रियों में जो शक्ति का संचार होता है वो उन देवताओं की वजह से। इसलिए ये एक संकल्प है साधक का कि मेरे में जितनी भी तरह की शक्तियां हैं, हाथ पैर कान सब, ये शुभ की ओर चलें, प्रसन्नता की ओर चलें। इसमें सबसे अधिक महत्व उन्होंने कान को और आंख को ही दिया है, और संसार की अधिकांश जितनी चीजें हैं वो कान और आंख के माध्यम से ही हमारे तक पहुंची हुई। जितने भी हमारा ये नाम कि मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये है, ये जितने भी शब्द, ये सब सुन सुन के शब्दों के माध्यम से आए हुए, वो अच्छा होता है, अमुक बुरा होता है, शब्द ही संस्कार डालते हैं। अमुक धर्म अच्छा है, अमुक धर्म बुरा है, इधर को मुंह करके प्रार्थना करोगे तो वहां जाएगी, उत्तर को करके करोगे तो वैसी जाएगी, किस तरफ को मुंह होना चाहिए प्रार्थना करते समय, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जितनी भी। तो सुन सुन के जो फिर एक आप समझे हमारे मन के अंदर किसी चीज के शुभ अशुभ के संस्कार बन जाते हैं, और वही संस्कार हमारे जीवन का संचालन करते। इसलिए जितने भी कर्म, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये शब्दों की ही प्रेरणा है कि अमुक जगह जैसे स्वर्ग है, नरक है, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो सब शब्दों के माध्यम से ही हमारे तक पहुंचे हुए। इसलिए शब्द के प्रति सावधान रहना, ये साधक का सबसे पहली बात कि जब हम सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं। कहीं पर भी सत्संग में तो ये बात होती है कि चलो उतनी देर हमने ईश्वर की चर्चा ही सुननी है, लेकिन इसके बाद भी जहां कहीं भी हम बैठे हुए हैं, जिस जगह भी कोई चर्चा हो रही है, उस समय सावधान रहना चाहिए कि हम सुन क्या रहे, क्योंकि वो सुनने से ही हमारे संस्कार बनेंगे। उस समय यही ध्यान रखना चाहिए कि जो सुन रहे हैं ये हमें अशुभता से बचा रहा है, प्रसन्नता को दे रहा है या नहीं। प्रायः ये तो होता है कि वो हमें प्रसन्नता दे लेकिन वो अशुभता से बचा रहा है, ये भी अगर साथ में हो तो भद्रम, अगर वो नहीं है तो फिर वो भद्र नहीं है, और कोई भी शब्द आप ले सकते। ऐसे ही उन्होंने फिर आगे आंख के लिए भी ये बात कही कि आंख भी उसी को ही देखे, कान भी उसी को ही सुने, भद्र को ही, और आंख भी उसी को ही देखे, इस तरह से। और उन्हीं के लिए फिर ये प्रार्थना की गई है, यजत्रा कहते हैं यज्ञ करने वालों का जो त्राण करे, जो यज्ञ कर रहा है, जो साधना कर रहा है, इसकी जो रक्षा करे, उसको यजत्रा बोल देते हैं। हम स्थिरई रंगई, स्थिर अंगों से अर्थात सुस्वस्थ अंगों से हम स्तुति करते रहें। स्थिरैर अंगैर स्तुष्टवान सस तनु भिर्वेशे, तनु शरीर को कहते, तन को कहते, कि स्वस्थ अंगों सहित और स्वस्थ शरीर सहित हम उनकी स्तुति करते रहे। स्वस्थ अंग और स्वस्थ शरीर, हमारी इंद्रियां बलवान हों, ऐसे भी इसमें कई हमारे शांति पाठ हैं कि मेरी इंद्रियां बलवान हो, मेरा अंग बलवान हो, ऐसा हो। तो यहां पर बलवान का अर्थ होता है जिसमें त्याग की शक्ति हो, आंख देखे लेकिन चिपके नहीं किसी से, उसको बलवान आंख कहते हैं। और अगर आंख ने कोई तमाशा देखा, रूप देखा और उसके पीछे पीछे ही चल पड़ा तो ये कमजोर, वो स्वस्थ नहीं। इसलिए जब शास्त्र में स्वस्थ अंगों की बात, पुष्ट अंगों की बात होती है तो उसका अर्थ होता है त्याग की क्षमता हो, हमारी इंद्रियां विषयों में चिपके नहीं, उनको देखे तो सही और उनका सदुपयोग भी करे लेकिन उनका दुरुपयोग या उपभोग में ना फंस जाए, सदुपयोग में ही रहे, ये स्वस्थ इंद्रियों की निशानी, नहीं तो वो बीमार। तनु भी यहां पर, ये तन शब्द ये बहुवचन अर्थात इसमें तीनों शरीर लिए जाएंगे, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म भी और कारण। स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो, सूक्ष्म भी स्वस्थ हो और कारण शरीर भी स्वस्थ, इन तीनों शरीरों से। खाली ये नहीं है कि स्थूल शरीर ही हमारा स्वस्थ रहे और मन के अंदर विकार भरे रहे, तो तीनों ही शरीरों को भी यहां ले लेना। और फिर समष्टि शरीरों, सभी शरीरों को भी ले सकते हैं, जितने भी उनको भी ले सकते हैं। तनु, तन का मतलब सूक्ष्म भी होता है, तन मात्राएं जैसे बनते, तो सूक्ष्म से इसका अर्थ यह होता है कि तत्व को समझने वाली बात, केवल स्थूलता पर ही हम ना रह जाए। सूक्ष्म हमारी इंद्रियां इतनी सुस्वस्थ हों कि बात को सुनते ही सूक्ष्मता तक पहुंच, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो तत्व है उसको पकड़ सके, ऐसा ना हो कि हम उस तत्व को पकड़ ना पाए। तो तनु का मतलब सूक्ष्म तत्व को पकड़ने वाली स्वस्थ इंद्रियां, कि जब कोई हम अध्यात्म का उपदेश सुनते हैं तो उसमें जीव, ब्रह्म, ब्रह्म की परिभाषा, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं हम तुरंत वहां पर पहुंच जाए, कहीं इधर उधर भटक ना जाए, सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को समझने की क्षमता हो और उनका ही हम उपभोग करते हुए बाकी उम्र व्यतीत करें। फिर उन्होंने इसमें इंद्र के लिए, बृहस्पति के लिए, पूखा के लिए, इन सब से ये संकल्प है कि ये सब स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब भद्रम से मिलता जुलता ही है, सुअस्ति जो शुभ हो, जो अच्छा हो। ये इन आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों ही इन सब शब्दों के अर्थ निकलेंगे। इंद्र के अर्थ भी तीनों तरह के ही निकलेंगे, बृहस्पति के भी, उनके भी, वो देवता भी है, मन को भी इंद्र कहते हैं, जो इंद्रियों का राजा हो वो भी है, एक वो देवता की कल्पना भी की हुई है कि जो आकाश में रहता है, जिसके पास वज्र है, जो वर्षा करता है, उस देवता की बात भी है। तो ये आदि दैवक रूप है उसका, और अंततः सब में से महान होने पर इंद्र शब्द केवल उस परम सत्ता के लिए भी बहुत बार आया है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, या आत्मा के लिए भी इस शब्द का प्रयोग है। इस तरह से इन सब शब्दों को लेकर ये जो शुरू में बैठकर हम संकल्प है हमारा, ओम से जिसकी बात शुरू होती है, समाहित मन हो और एकाग्रता हो, इन्हीं में अगर हम इसी को, ये जो शांति पाठ है इसका फिर एक बार अर्थ करने शुरू करें तो इसमें लक्ष्य क्या है वो भी निर्धारित हो जाता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन क्या हैं वो भी साथ में आ जाएगा। ये इंद्र आदि की देवताओं का नाम लेते हुए जब कहते हैं तो इसमें आपके समस्त इंद्रियां, जो कुछ भी आपने समझना है वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, अंत तय करते करते वो ज्ञान इंद्रियां इतनी सूक्ष्मता में पहुंच जाती हैं कि तत्व को पकड़कर इंद्रियां पीछे रह जाती हैं, जिसको कहते हैं वहां पर फिर इंद्रियों की पहुंच नहीं। सूक्ष्मता तक पहुंचने का एक ढंग है ये भी, जिसको हम शांति पाठ कहकर सभी उपनिषदों में जिसको दिया गया। संक्षेप में इसका अर्थ हुआ, अब हम अपने इस मुंडक उपनिषद की प्रथम श्रुति का थोड़ा अर्थ करते हैं। ओम ब्रह्मा देवानं प्रथमा संबभूव। वैसे ये गीता प्रेस गोरखपुर का मुंडक उपनिषद 5-7 रुपए का है, अगर किसी को इनका हो रुचि तो ये खरीदा जा सकता है, हाथ में रखा जा सकता है। आ गया? अच्छा, तो सभी उसको ले और पढ़े तो ये और अच्छी बात है कि आपको यहां से ही ये उपलब्ध हो रहा है। ओम ब्रह्मा देवानं प्रथमा संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा, अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। पहला श्लोक इसका यह है, उसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा देवानं प्रथम, ब्रह्मा जो सब देवताओं में से प्रथम है, और क्या है, संभभूव, अपने आप जो प्रकट होते, विश्वस्य कर्ता, संसार या सृष्टि की रचना करने वाले हैं, विश्व के रचयिता, भुवनस्य गोप्ता, और इनके रचयिता भी हैं और त्रिभुवनों के रक्षक भी हैं, इनकी रक्षा करने वाले भी हैं। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, उन्होंने, उस ब्रह्मा ने इस ब्रह्म विद्या को, जो सब विद्याओं में से महान है, अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, उन्होंने इस विद्या को अपने बड़े पुत्र अथर्वा से कहा। ये ब्रह्म विद्या की एक परंपरा बतला रहे हैं वो, कि ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा जो देवताओं में प्रथम है, उन्होंने, और वही सृष्टि के रचना करने वाले भी हैं, इसकी रक्षा करने वाले, उन्होंने इस विद्या को, कौन सी ये विद्या है, उस विद्या के लिए विशेषण दिया सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सब विद्याओं में से जो महान, इसको अपने बड़े पुत्र अथर्वा को कहा। अथर्व ने याम प्रवदेत ब्रह्म अथर्वा ताम पुरोवाच अंगिरो ब्रह्म विद्या स भारद्वाजाय सत्यवाह प्राह, भारद्वाजो अंगिरसे परावरा। अथर्व ने जो इस विद्या को, अथर्वेन याम प्रवदेत ब्रह्म अथर्वा ताम पुरोवाच अंगिरो, ब्रह्मा जी से इस विद्या को लेकर अथर्वा ने इसको अंगिरा से कहा। अंगिर ने इस विद्या को भारद्वाज गोत्र में पैदा हुए सत्यवाह को कहा, और सत्यवाह ने इसको अंगिरस ऋषि से कहा, इस विद्या को पूरी तरह से अंगिरस ऋषि तक पहुंचा दिया। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा, अथर्वा ने उसे अंगिरा को, अंगिरा ने उसको सत्यवाह को, सत्यवाह ने उसको भारद्वाज, और भारद्वाज सत्यवाह ने उसे अंगिरस से कहा, और वो जो है अब अंगिरस शौन को, हा वही महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रच्छ, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति। अब अंगिरस ऋषि के पास शौनक ऋषि गए, शौनक जी के लिए विशेषण दिया गया महाशालो, अर्थात प्रसिद्ध महाग्रहस्थ, वो गृहस्थी से शौनक जी, और गृहस्थ आश्रम में रहकर वो सभी अपने कृत नियमानुसार धर्मानुसार कर रहे थे, वो अंगिरस के पास गए। गए भी कैसे, विधिवत उपसन्न, विधि पूर्वक, जैसे गुरु के पास जाना चाहिए, जैसे गुरु के पास पहुंचे वैसे वो वहां पर गए और जाकर उन्होंने प्रश्न किया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, वेदांत के सभी लोगों को ये वाक्य एक रटा हुआ सा होता है, सबने इसको रटा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, हे भगवान मुझे वो बतलाइए कि वो ऐसी कौन सी है कि जिसको जान लेने पर सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये सब कुछ ही जाना जा सकता है। कोई एक वो क्या चीज है कि हमने सुना है कि कुछ एक ऐसा है कि उस एक को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो गया। अब आप मुझे ये बतलाओ कि वो क्या है जिस एक को जानकर जाना हो सब जाना हुआ हो गया, ऐसा उनका ये प्रश्न था। इसमें ब्रह्म विद्या के महत्व को दिखलाने के लिए ये बात कही गई। ब्रह्म विद्या के जो प्रतिपादक हैं वो तो समझ लो कि ब्रह्म ही हैं, कोई दूसरा ब्रह्म को कैसे जाना जाए ये ब्रह्म ही बतला सकता है। किसी आदमी की समझ में ये बात नहीं आ सकती कि हम उसको कैसे जाने। तो इसलिए ब्रह्म विद्या के जब हम आचार्यों का नाम लेते हैं तो नारायणम पदम भवम वशिष्ठम शक्ति च तत्पुत्र पराश्रम च, नारायण से ही शुरू करते कि इस विद्या को का व्याख्यान नारायण ने स्वयं कि मुझे आप कैसे जानोगे, उन्होंने ही इस बात को बतलाया। प्रायः जिस समय गीता का भी कभी कोई अर्थ करना पड़ जाए किसी भी श्लोक, तो भगवान कृष्ण ने एक बार नहीं गीता में कई जगह ये दोहराया है कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशा स्थिता, आत्मा के रूप में मैं आप सभी में स्थित। तो इसका अर्थ ही सीधा सा होता है कि वो आत्मा की ही आवाज है, गीता किसी व्यक्ति की नहीं है, सुना रही है उस बुद्धि को जो थोड़ी देर के लिए मन के वश में आ गई, अपना पराया मान करके ये मेरे हैं वो है। अर्जुन पुनः छूट गया, सरलता जाती रही, सरलता का मतलब है कि सीधा सत्य पर जो टिका रहे, और मन के साथ जो मिल गया तो फिर वो नहीं रहा अर्जुन। तो इसलिए स्वयं और कोई उसमें है नहीं, स्वाय इस बात की कि वो आत्मा की ही आवाज है, और आत्मा की आवाज को अगर बुद्धि सुनकर मन को अपने साथ ले ले तो बात पूरी होगी, लेकिन आत्मा अपनी आवाज बतला भी दे, बुद्धि उसे सिर हला भी दे और फिर मन के साथ मिल जाए तो फिर कोई दूसरी बात बनेगी नहीं। इसलिए यहां पर भी उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा जो सब देवताओं में पहले, उन्होंने ये बात अपने बेटे अथर्व से कही। अथर्व उसको कहते हैं जो थिरके नहीं अपनी जगह से, जो स्थिर हो दृढ़ हो, उसी को ही अथर्व कहते हैं। उसके और भी कई अर्थ हैं लेकिन मुख्य बात इतनी ही है। और ब्रह्मा तो अंतःकरण को कहते ही है, चतुर्मुखी है जिसमें मन बुद्धि चित अहंकार, जब तक अंतःकरण जागृत नहीं होगा सभी देवता सोए रहते हैं, हाथ पैर आंख कान नाक, इसलिए इसको देवताओं में प्रथम कहा गया। अगर अंतःकरण नहीं है, भागवत में इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण है कि सभी देवताओं ने कोशिश की, आंख के देवता ने, दूसरे देवता ने कि ये आंख देखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में अंतःकरण में जब वसुदेव ने प्रवेश किया तो सारी इंद्रियां सचेत हो गई। तो ब्रह्मा का मतलब भी अंतःकरण से ही है, अंतःकरण को आत्मा की आवाज ही है ये कि सत्य क्या है असत्य क्या है, किस तरह से हम सत्य तक पहुंचे, ऐसा इसका अर्थ सीध। और फिर धीरे धीरे ये वहां से बुद्धि में, बुद्धि से उसने आगे इंद्रियों में, इंद्रियों में ऐसे करके पूरे शरीर में इसकी व्याप्ति इन्हीं श्लोकों का अर्थ बन जाएगा। हम उसमें ज्यादा समय न लगा के बस इतनी बात है कि यहां तक तो एक परंपरा बतला दी इस विद्या के महत्व को बतलाने के लिए। ये विद्या महत्वपूर्ण है, ये बात जब से प्रेमपुरी आश्रम बना तब से ही सब सुनते चले आए। इसलिए गुरु के पास कैसे जाना चाहिए कि गुरु के पास ऐसे जाओ, उस बातों को हम नहीं ले रहे यहां पर, नहीं तो उनमें भी बड़े ध्यान से केवल व्याख्यान करना हो तो एक सप्ताह इसी बात पर निकल सकता है कि गुरु के पास कैसे जाओ और गुरु कैसा हो और शिष्य कैसा हो, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसे हम शिष्य हैं हमें पता है, जैसे गुरु हैं वैसा भी हमें पता है, उस बात को दोहराने से कोई लाभ होगा नहीं। अब सीधी सी बात ये आ गई कि इसमें प्रश्न ये बना कि वो कौन सी एक ऐसी वस्तु है, वो कौन सा एक ऐसा तत्व है, वो कौन सी ऐसी एक चीज है जिस एक को जान लेने पर सारा कुछ जाना हुआ हो जाए। ये प्रश्न है शौनिक का, अर्थात एक गृहस्थ का, एक जिज्ञासु का ये प्रश्न है, और अंगिरस ऋषि इसका उसको जवाब दे रहे हैं, वही मुंडक उपनिषद है। जवाब में वो ये कहते हैं तस्मै साहोवाच, उसको अंगिरस ने कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। उन्होंने कहा दो तरह की विद्याएं हैं जिसको सब ब्रह्मविद जानते हैं, एक का नाम है परा और दूसरी है अपरा। ये दो तरह की विद्याएं बतलाई उन्होंने, परा और अपरा। अब इस संबंध में कल को आगे फिर चलेंगे, अभी इसी के साथ विश्राम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।